8 अप्रैल दिन शनिवार, स्वीकार कीजिए मेरा वंदना का नमस्कार। सीरिया पर संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक, अमेरिका ने कहा जरूरत पड़ी तो सीरिया पर दोबारा हो सकती है कार्रवाई।
The United States will no longer wait for Assad to use chemical weapons without any...
कार्यक्रम में जानेंगे कि क्या सपा में घमासान का नया दौर शुरू हो गया है। विवेचना में अमजद खान याद कर रहे हैं बड़े गुलाम अली खान जैसे उस्तादों को।
जब कोई उनको इनवाइट करता था तो वो ये कहते थे, मैं होटल में नहीं ठहरूंगा, मुझे एक घर चाहिए खाली जहां मैं अपनी कुकिंग खुद करूंगा। ट्रेन में उनके साथ एक असली घी का टिन चलता था।
होगी फिल्म समीक्षा और आईपीएल मैच का नतीजा, पर पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। अमेरिका ने गुरुवार के हमले के बाद सीरिया में और हमले की चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सीरिया में अमेरिकी हमले के बाद संयम बरतने की अपील की है ताकि सीरियाई लोगों की दिक्कतें और ना बढ़ें। सीरियाई सरकार ने गुरुवार रात के अमरीकी मिसाइल हमले की निंदा की और कहा कि ये कार्रवाई जल्दबाजी में लिया गया कदम है। वहीं ब्रिटेन और फ्रांस ने अमरीकी कार्रवाई का समर्थन किया है। मंगलवार को सीरिया में रासायनिक हमले में कई बच्चों समेत 89 लोगों की मौत हो गई थी और इसके लिए सीरियाई सरकार पर उंगलियां उठ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र में सीरिया के स्थायी उप प्रतिनिधि मोंजेर ने अमरीका के हमले की निंदा की और उसके जांच से पहले हवाई हमले करने का आरोप लगा दिया।
This treacherous act of aggression is a grave violation of the charter of the
United. ये हमला न सिर्फ संयुक्त राष्ट्र के विशेषाधिकार का गंभीर उल्लंघन है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और नियमों का भी उल्लंघन है। अमेरिका ने खोखले दावों, झूठे गढ़े हुए तर्कों से ये साबित करने की कोशिश की कि खान शेखोन में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल सीरियन अरब आर्मी ने किया। अमेरिका ने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। ये थे मोंजेर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अमेरिकी निर्यात को बढ़ावा देने और चीन और अमेरिका के बीच व्यापार घाटे को कम करने के लिए 100 दिवसीय योजना पर सहमति बन गई है। फ्लोरिडा में ट्रंप के रिसॉर्ट पर हुई मुलाकात में इस समझौते की जानकारी देते हुए अमेरिका के वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस ने कहा कि लक्ष्य ज्यादा महत्वाकांक्षी है, लेकिन इससे बातचीत की रफ्तार में भारी तेजी आई है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से साफ होता है कि दुनिया की दो बड़ी ताकतों के नेताओं के बीच अच्छा तालमेल बन रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन यात्रा के लिए शी जिनपिंग के न्योते को स्वीकार कर लिया है। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टेफान लुइवेन ने कहा है कि राजधानी स्टॉकहोम में स्टोर से लॉरी टकराने का हादसा चरमपंथी कार्रवाई हो सकता है। उन्होंने कहा कि चरमपंथियों की कभी जीत नहीं होगी और स्वीडन इस घटना के जवाब में अपनी सीमा की सुरक्षा को बढ़ा देगा। इससे पहले स्टॉकहोम के सेंट्रल हिस्से में एक स्टोर से में लॉरी घुस गई थी और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए हैं। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। एक बियर डिलीवरी सेवा से इस ट्रक को चुराया गया था। जांच कर रही स्टॉकहोम पुलिस की टीम के प्रमुख जेन इवेंसन ने इस बारे में ये जानकारी दी।
वी हार कंट्रोलेरात एट अंतल पर्सोनर अंडर क्वेलन।
हमने कुछ लोगों से पूछताछ की है, हमने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वो जिसके बारे में पहले जानकारी दी गई थी और तस्वीर जारी की गई थी उससे कुछ मिलता जुलता है। अभी हम उससे पूछताछ कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता साफ है कि हम व्यापक जांच करेंगे और इस मामले की पूरी जड़ तक जाएंगे। ये थे जैन इवेंसन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टॉकहोम में हुए कथित हमले पर दुख जताया है और भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर बताया है कि यह हमला भारतीय दूतावास के पास हुआ और वो स्वीडन में भारतीय राजदूत के संपर्क में हैं और सारे अधिकारी वहां पर सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अगर कोई भी भारतीय इस हमले में प्रभावित हुआ है तो वो भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकता है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत आप सुन रहे हैं वंदना के साथ, रेडियो के अलावा bbchindi.com और अपने मोबाइल फोन पर भी। आज कार्यक्रम में सबसे पहले बात सीरिया की। कल सुबह जब हम कार्यक्रम में लाइव थे तभी हमारे संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय ने खबर दी थी कि अमरीका ने मिसाइल से सीरिया पर हमला कर दिया है। इसके बाद से ही सीरिया को लेकर सरगर्मी बनी हुई है। मंगलवार को रिपोर्टें आई थी कि सीरिया में संदिग्ध रासायनिक हमला हुआ है जिसके बाद अमरीका ने हमला किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक हुई है जिसमें अमरीका ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो सीरिया के खिलाफ आगे भी कदम उठाया जा सकता है, लेकिन रूस ने अमरीकी कदम को कानून का उल्लंघन बताया है। पूरे ब्यौरे के साथ हैं हरिता कांडपाल।
गुरुवार रात को सीरिया में सैन्य अड्डे पर मिसाइल दागने के बाद अमेरिका ने फिर से सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है। रूस और सीरिया ने अमेरिकी कार्रवाई को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयम बरतने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत निकी हेली ने सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में कहा कि रासायनिक हमला होने की सूरत में अमेरिका चुप नहीं बैठेगा।
The United States will no longer wait for Assad to use chemical weapons without any consequences.
अमरीका इस बात का इंतजार नहीं करेगा कि असद रासायनिक हथियार का इस्तेमाल करेंगे और बचकर निकल जाएंगे। वो दिन चले गए, लेकिन हमें इस भयावह युद्ध के राजनीतिक समाधान की तरफ बढ़ना है। अब सीरिया प्रशासन और उसके सहयोगियों से संयुक्त राष्ट्र की शांति प्रक्रिया को गंभीरता से लेने की उम्मीद करते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की और सऊदी अरब ने रासायनिक हमले के लिए सीरिया सरकार की निंदा की और अमरीकी कार्रवाई का समर्थन किया है। वहीं ईरान ने इस कार्रवाई का विरोध जताया है।
मैंने कुछ ही देर पहले हमारे वॉशिंगटन संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय से फ़ोन पर बात की और पूछा कि करीब करीब 24 घंटे हो चुके हैं मिसाइल हमले को, अब अमेरिका में आगे की क्या रणनीति नज़र आ रही है।
देखिए, पहली बात तो ये कि इस हमले से सीरिया की जमीनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं नजर आया है, बल्कि एक समाचार एजेंसी के अनुसार तो जिस हवाई पट्टी पर बमबारी हुई वहां से आज ही सीरियाई लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरा है। दूसरी बात, रूस के साथ तनाव में खासा इजाफा हो गया। रूस ने सीरिया में आइसिस और दूसरे चरमपंथी गुटों पर हवाई हमलों के दौरान अमरीकी और रूसी विमानों की आपस में टक्कर या कोई दुर्घटना न हो इसके लिए जो एक जानकारी एक दूसरे के साथ बांटने का एक समझौता था उसे रद्द कर दिया है। तीसरी बात जो ट्रंप के फायदे में गई वो ये कि कांग्रेस की दोनों ही पार्टियों यानी रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है। कुछ इसके खिलाफ भी थे, लेकिन कुल मिलाकर उनकी टीम ने इसे एक ठोस कारगर विदेश नीति की तरह पेश किया है जिसमें कमांडर इन चीफ मुश्किल फैसलों से पीछे नहीं हटते। और चौथा कि इस बमबारी ने एक बेहद अहम समझे जाने वाले दौरे यानी चीन के राष्ट्रपति के अमरीकी दौरे को एक तरह से ओवरशैडो कर दिया, पृष्ठभूमि में ढकेल दिया, जो माना जा रहा है कि चीन को कुछ हद तक नागवार गुजरा होगा।
तो कुछ ठोस निकल के आ पाया है इन दोनों राष्ट्रपतियों की मुलाकात से, क्योंकि इसको काफी अहम माना जा रहा था और फिर अचानक से ये सीरिया का घटनाक्रम हो गया।
व्यापार, उत्तर कोरिया, साउथ चाइना सी जैसे विवादास्पद मामलों पर कोई प्रगति नहीं नजर आई और काफी हद तक इसे ट्रंप के चीन के दौरे के लिए टाल दिया गया। दोनों ही नेता एक 100-डे प्लान पर राजी हुए हैं जिसका मकसद है आपसी व्यापार के मसलों को सुलझाना, अमरीकी निर्यात में बढ़ावा जिससे अमरीका का जो चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो। और उत्तर कोरिया पर अमरीका ने ये बयान भी फिर से दिया है कि अगर चीन उसे रोकने के लिए आगे नहीं आता तो अमरीका अकेले कार्रवाई करेगा। और सीरिया के हमले के बाद इस बयान का वजन बढ़ा है।
अमरीकी लोगों में जो सीरिया पर हमला हुआ है तो किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है?
ट्रंप के जो कट्टर समर्थक थे उनमें से कई सामने आए हैं इसकी आलोचना करने के लिए। उन्होंने ये कहा है कि हमने इस वजह से उन्हें वोट नहीं दिया था, हमने उनके अमेरिका फर्स्ट के वादे की वजह से उनको चुना था, उनको वोट दिया था जिसमें उनका वादा था कि वो अमरीकी लोगों की जिंदगी बेहतर करेंगे, उनके लिए नौकरियां पैदा करेंगे।
तो सीरिया पर लगातार नजर रखे हुए हैं ब्रजेश उपाध्याय, और अगर आप इस पर कोई विशेष विश्लेषण पढ़ना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर भी आ सकते हैं।
बीबीसी इंडिया बोल।
क्या कानून से ऊपर है गोरक्षक? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था गोरक्षा के नाम पर गोरख धंधा कर रहे हैं लोग। इसके बावजूद अलवर में गाय की तस्करी के शक में पहलू खान की पीट पीट कर हत्या की गई। गोरक्षा के नाम पर मारपीट और हत्या करने वालों के हौसले बुलंद क्यों? जाहिर कीजिए अपनी राय इंडिया बोल में। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 8 अप्रैल शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
तो इंडिया बोल का विषय तो आपने सुन लिया और अब कार्यक्रम में भारत से जुड़ी घटनाओं पर बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी में यूपी विधानसभा चुनाव के पहले से ही चल रही तकरार एक बार फिर सतह पर आती दिख रही है। पार्टी नेता शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव को दोबारा अध्यक्ष बनाए जाने की मांग कर डाली है। वहीं चुनाव के बाद से ही कई नेता पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। इन सब के बीच अखिलेश यादव पार्टी के विभिन्न मोर्चों की ताबड़तोड़ बैठकें ले रहे हैं। लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
लखनऊ में अखिलेश यादव पार्टी के नेताओं के साथ आजकल लगातार बैठकें कर रहे हैं और उसी समय इटावा में शिवपाल यादव ने उन्हें चुनाव से पहले किया एक वादा याद दिला दिया। शिवपाल ने कहा कि चुनाव बाद अखिलेश ने नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद वापस करने का वादा किया था, इसलिए अब वो अपना वादा निभाएं। इससे पहले शिवपाल यादव की मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के साथ मुलाकात भी चर्चा में रही थी और उससे ज्यादा चर्चा में रही मुलायम सिंह की दूसरी बहू अपर्णा बिष्ट यादव की योगी से पिछले दो हफ्ते में 3 बार मुलाकात। वरिष्ठ पत्रकार सुनीता एरन के
शिवपाल एंड अपर्णा बिल्कुल अलग चल रहे हैं। मुलायम सिंह जी भी बीच बीच में अखिलेश को पुनः करते हैं। फैमिली का वॉर है, वो पार्टी पे इसका एक असर तो हो रहा है। इलेक्शन जब होंगे बट अभी सपोर्ट अखिलेश के पास रहेगा।
शिवपाल और अपर्णा की आदित्यनाथ योगी से मुलाकात के अलावा इन दिनों समाजवादी पार्टी छोड़ने वाले नेताओं का सिलसिला भी चर्चा में है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, लीगल सेल के अध्यक्ष और राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे गौरव भाटिया पार्टी पहले ही छोड़ चुके थे। 3 दिन पहले पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्वेता सिंह ने भी पार्टी से नाता तोड़ लिया। श्वेता सिंह फिलहाल किसी अन्य दल में तो शामिल नहीं हुई है, लेकिन पार्टी छोड़ने की वजह कुछ इस तरह बताती है।
तो जिस तरीके से एक जो फैमिली कंफ्लिक्ट पार्टी में चला और जिसकी सजा हम लोग को एज अ कार्यकर्ता भुगतनी पड़ी है और बहुत ही सफोकेटिंग माहौल अभी पार्टी में हो गया है इस समय, तो हम लोग सब काम करने में हम बहुत असमर्थ अपने आप को महसूस कर रहे थे। लगातार हम लोग को इग्नोर किया जा रहा था, तो हमें खुद ही नहीं पता था कि हम पार्टी में जिनकी लीडरशिप में काम करना चाह रहे हैं वो इच्छुक है भी कि नहीं हमको साथ में लेकर चलने का।
श्वेता सिंह की तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासा प्रभाव रखने वाले युवा नेता राजेश यादव भी कुछ दिन पहले पार्टी को अलविदा कह गए और उन्होंने भी अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधा है। इसके अलावा अपर्णा यादव भी सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन परोक्ष रूप से हार के लिए अखिलेश को जिम्मेदार ठहरा चुकी हैं। बहरहाल जानकारों का कहना है कि अब अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो उन्हें खेमेबाजी पर खुद लगाम लगानी होगी। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
तो लगता है समाजवादी पार्टी में दरार अब भी है बरकरार।
खबर सच है अगर BBC पर है।
अब बात दक्षिण भारत की। तमिलनाडु की आरके नगर विधानसभा सीट पर 12 अप्रैल को उपचुनाव होना है, जो जयललिता की सीट हुआ करती थी। तमिलनाडु में शशिकला की अगुवाई वाली AIADMK और भारतीय जनता पार्टी के बीच इस चुनाव से पहले जुबानी जंग छिड़ी हुई है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री विजय भास्कर और अभिनेता से नेता बने शरद कुमार पर आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर दोनों पार्टियों में ठन गई है। AIADMK का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी आयकर विभाग के जरिए उपचुनाव के वक्त लोगों को परेशान कर रही है, तो BJP इन आरोपों को गलत बता रही है। इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
सामान्य तौर से आयकर विभाग इलेक्शन के दौरान छापे नहीं डालता है। कल जब तमिलनाडु में आयकर विभाग ने छापे डाले तो उस पर राजनीतिक बवाल शुरू हो गया। शशिकला की अन्ना DMK गुट के खिलाफ पिछले थोड़े दिनों से ये इल्ज़ाम सुनने में आ रहा है कि वो मतदाताओं को वोट के लिए पैसे बांट रही है और इस मामले में सबसे आगे नाम आ रहा था राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विजय भास्कर का। जब छापे की कार्रवाई चल रही थी तब विजय भास्कर ने पत्रकारों को अपने घर के गेट तक आकर बहुत कुछ कह दिया। हम कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। जब वो 6 बजे सुबह आए तो हमने सारे दरवाजे खोल दिए। हमारे घर से उनको 10,000 रुपये भी नहीं मिले। ये सरासर राजनीतिक उत्पीड़न है। ये थे विजय भास्कर के शब्द। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिसमें साफ तौर से दिख रहा है कि मतदाताओं को नोट दिए जा रहे हैं। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपना नाम नहीं बताने के शर्त पर कहा कि अभी तक आयोग के अधिकारी करीब 12 लाख रुपये मतदाताओं को बांटते हुए जब्त कर चुके हैं। बहरहाल आयकर विभाग के छापे पर शशिकला के अन्ना DMK पक्ष के संसद सदस्य बाला सुब्रमण्यम ने सीधे इल्जाम BJP और RSS पर लगा दिया कि वो उनकी पार्टी की जीत से डरते हैं। लेकिन बीजेपी के महासचिव मुरलीधर राव ने बीबीसी से कहा,
देखिए भारतीय जनता पार्टी को एक राजनीतिक पार्टी के नाते आर के नगर चुनाव के अंदर वो भी एआईडीएमके के संबंधित मंत्री अथवा उनके संबंधित कंपनियों पर आईटी रेड के साथ जुड़ना ये नितांत बेतुकी है।
दिलचस्प बात यह है कि आयकर विभाग के छापे चुनाव आयोग के आदेशों पर नहीं हो रहे हैं, लेकिन थोड़े राजनीतिकों को आयकर विभाग के छापों में उपचुनाव रद्द होने का अंदेशा भी दिख रहा है। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
तो उपचुनाव से पहले चल रही है राजनीतिक खींचतान, और अब बारी है उस पेशकश की जिसका आप सबको इंतजार रहता है, इस बार की विवेचना। हाल ही में सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खां की एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, मास्टर ऑन मास्टर्स, जिसमें उन्होंने 20वीं सदी के 12 महान शास्त्रीय संगीतज्ञों और गायकों से जुड़े किस्सों पर रोशनी डाली है। इस पुस्तक के कुछ दिलचस्प पहलुओं पर नजर डाल रहे हैं रेहान फजल।
दुनिया का कोई भी मंच हो, दिल्ली का सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम, लंदन का रॉयल एल्बर्ट हॉल या फ्रैंकफर्ट का मोत्सार्ट हॉल या सिडनी का ओपेरा हाउस, उस्ताद अमजद अली खान ने अपने सरोद वादन से पूरी दुनिया के संगीत प्रेमियों को न सिर्फ मंत्रमुग्ध किया है बल्कि उन्हें खड़े होकर दाद देने या अंग्रेजी में कहें स्टैंडिंग ओवेशन के लिए मजबूर किया है। अपने घराने और अपने पिता की तारीफ में तो हर कोई लिखता है, लेकिन भारतीय संगीत के इन चुनिंदा नगीनों पर शायद ही किसी उस्ताद की नजर गई है, और शायद यही वजह है कि किताब का नाम रखा गया है मास्टर ऑन मास्टर्स। कसूर में जन्मे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को अमजद ने बहुत छुटपन से देखना शुरू किया था। जमजमा सरगम, स्थाई अंतरा और चौथ की तान के लिए मशहूर बड़े गुलाम अली खां अमजद के वालिद हाफिज अली खां को भाई साहब कहकर पुकारते थे। डील डॉल में लंबे चौड़े बड़े गुलाम अली खां ने मुगले आजम फिल्म में गाया भी था, और उस समय जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को हर गाने के लिए 500 रुपए मिला करते थे, बड़े गुलाम अली खां ने 25,000 रुपए की मांग की थी और के आसिफ इसके लिए तुरंत राजी भी हो गए थे। अमजद अली खां बताते हैं,
वो बहुत तंदुरुस्त और लईम शईम थे, बल्कि एक दफ़ा जब बहुत शुरू में मुझे मिले थे तो मुझे खुद ही उन्होंने वो किस्सा सुनाया, कहने भाई जब भाई साहब पाकिस्तान आए थे, बिफोर पार्टीशन की बात है, तो कहने मैं भाई साहब को मिलने गया होटल में, और कहने भाई साहब मुझे देख के डर गए क्योंकि मूछें थी और बड़े पहलवान किस्म के लगते थे। वो खुद ही अपनी ज़बान से कहने लगे। मैंने उनको कहा कि मैं ग़ुलाम अली हूँ, और तो अब्बा ने बहुत उनको इज्जत करी, प्यार करा। जब कोई उनको इनवाइट करता था तो वो ये कहते थे भाई मैं होटल में नहीं ठहरूंगा, मुझे एक घर चाहिए खाली जहाँ मैं अपनी कुकिंग खुद करूँगा।
अच्छा।
ट्रेन में उनके साथ एक असली घी का टिन चलता था, वो प्योर घी, उसके बगैर खाना उनको पसंद ही नहीं था। इलाहाबाद में एक दफ़ा मैं छोटा था काफ़ी, 1961 या 60 होगा, वो बहुत बड़ा फेस्टिवल होता था प्रयाग संगीत समिति, तो खान साहब को घर बहुत बड़ा घर दिया, किचन दिया, और वहाँ मुझे उन्होंने कहा बेटा मेरे साथ खाना खाना, मैंने कहा जी। तब उन अपनी औलाद को ढूंढ रहे थे भाई मुनव्वर कहाँ है, देखो अब सब लोग ढूंढ रहे हैं मुनव्वर, कहे मुनव्वर मिल नहीं रहे, कहने देखो बावर्ची खाने में होगा शायद वो तो उन्होंने वो खाना बनाने की ट्रेनिंग अपनी औलाद को भी, मुनव्वर अली खान साहब को भी दे दी थी, तो वो किचन में ही पाए गए। बहुत सारे ऐसे हमारे शास्त्रीय संगीत कार हैं जो डिस्कनेक्टेड रहते हैं ऑडियंस से, और उनको ये नहीं पता लगता कि कब ख़त्म करना है, लेकिन खान साहब का ये था कि वो ही न्यू कहाँ ख़त्म करना है। सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, कंसाइजनेस, ये एक बहुत बड़ा मंत्र है, ये सारे अल्फाज जो है।
अमजद साहब के इन 12 रत्नों में बेगम अख्तर का नाम भी आता है, जिनके बारे में वो कहते हैं कि जब वो गाया करती थीं तो उनकी 1.5 कैरेट की हीरे की नाक की कील उनके चेहरों पर नूर बरपा कर देती थी। اسٹیج کے قائدوں اور سلیقوں میں بھی بیگم اختر کی برابری کرنے والے بہت کم لوگ تھے۔
بچپن میں جب بھی میری ابا کے ساتھ میں جاتا تھا ادھر ادھر تو وہ بھی ہوتی تھیں، تو اس سے پہلے کہ میں ان کو آداب کروں وہ مجھے آداب خان صاحب، شی واز ویری کیئرفل اباؤٹ دس بیوٹیفل گریسفل ایٹیکیٹ۔ کشمیر میں ایک دفعہ آل انڈیا ریڈیو جو کشمیر تھا اس نے بیگم صاحب کو بلایا اور مجھے بھی بلایا، میں نے کہا بیگم صاحب میں شروع کروں گا، ارے نہیں نہیں میری توبہ میں آپ کے بعد، کان پکڑ کے انہوں نے بڑے، یہ بے ادبی میں نہیں کر سکتی ہوں۔ میں نے کہا جی میں تو بچہ ہوں آپ کا اولاد ہوں اور آپ اگر گا دیں گی تو یہاں مجھے کون سنے گا بیٹھ کے، کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اسے کیا ہوتا ہے کہ ہماری فیلڈ میں بہت سارے لوگ ہیں جو ہیومیلٹی کا ڈرامہ کرتے ہیں بہت زیادہ، دے ڈونٹ مین اینی تھنگ بٹ شی مینٹ ایوری ورڈ۔ ریڈیو کے لوگ آ گئے کہ چلیے صاحب ٹائم ہو گیا، 6:30 بجے شروع کرنا تھا، تو میں دوڑ کے جانے لگا، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا پیچھے سے اور خود دوڑنے کی کوشش کری انہوں نے، اینڈ شی سکسیڈڈ۔ وہاں سے ہنس رہی ہیں، کرٹن کھلوا دیا کہ اب تو آ گیا، آ ہی نہیں سکتا، اور انہوں نے بیٹھ کے گانا شروع کر دیا، انہوں نے 4 غزلیں، اور میں اسٹیج کے پیچھے خدا سے دعا کر رہا ہوں کہ مالک میری عزت تیرے ہاتھ ہے۔ اور جیسے ہی گانا ختم ہوا تو انٹرول ہو گیا تو لوگ پیچھے آئے ملنے کے لیے، گورنر بھی آیا پیچھے، تو بھگوان صاحب کو میں نے کہا کہ صاحب وہ کیا آڈینس ہے کچھ ہال کے اندر؟ کہتے نہیں ہم سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب کرٹن کھلا تو دیکھا بیگم صاحب سامنے بیٹھی ہوں آڈینس کے اندر، میں تو ان کے اس پیار محبت سے احترام سے دبا ہوا تھا بہت زیادہ، تو میں نے ہاؤ ٹو پے ہر بیک، تو میں سرود رکھ دیا، میں نے کہا بیگم صاحب آج آپ نے جو گانا گایا ہے میں سب راگ راگنی بھول گیا ہوں اور آپ تھک گئی ہوں گی، جا کے آرام کریے۔ کہنے لیجیے کیا ہم آپ کو سن نہیں سکتے؟ آپ بسم اللہ کریے، شروع کریے۔
بھارتی سنگیت کو وشو منچ پر استھاپت کرنے کا شرے اگر کسی کو دیا جا سکتا تھا تو وہ تھے روی شنکر۔ ایک بار امجد صاحب کے گھر پر روی شنکر نے سرود اور امجد نے ستار بجایا تھا،
تو وہ ہمارے گھر جب آئے تھے تو پنڈی جی نے اس دن ان کا ایسا موڈ آیا کہ بھائی سرود بجائیں گے ہم، تو ستار میں نے پکڑ لیا پھر، تو تھوڑا بہت ہم لوگ بجائے، تو ہی واز اے ملٹی ڈائمینشنل ملٹی فیسٹڈ پرسن۔
امجد علی خان اور بھیم سین جوشی نے کئی سنگیت سماروہوں میں ایک ساتھ پرفارم کیا ہے۔ امجد یاد کرتے ہیں کہ بھیم سین جوشی کے بعد بجانا ہر ایک کے بوتے کی بات نہیں ہوا کرتی تھی۔
کئی گروؤں سے سیکھا، لیکن ایک وقت تھا ایسا کہ وہ ہمارے والد صاحب کے پاس سیکھنے کے لیے گوالیر آ گئے تھے۔ سرود گھر کے باہر ایک فنکشن ہو رہا تھا ہمارا، قریب 10,000 آڈینس بیٹھی ہوئی ہے سامنے، اور کہا کہ یہی میں آتا تھا خان صاحب سے سیکھنے کے لیے میرے پتا جی سے، اور وہ دو راگ انہوں نے مجھے ایسے سمجھائے کہ میں آج تک ان کو گاتا ہوں اور میں ان کو یاد کرتا ہوں، پوریا اور ماروا، ایک ہی سروں کے دو راگ ہیں لیکن یہ الگ الگ ان کا کیریکٹر انہوں نے ہی مجھے سمجھایا۔ ایک ایسا لگتا تھا کہ وہ ہمارے پریوار کے ایک سدسیہ ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں۔
جو بھجے ہری کو صدا سوہی پرم پج پاوے گا، سوہی پرم پج پاوے گا، سوہی پرم پج
پاوے گا۔ تو سنگیت میں رچی بسی ریحان فضل کی وویچنا آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اور سنگیت کی دنیا سے نکل کر فلموں کی دنیا میں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کل یعنی شکروار کو ریلیز ہوئی کون سی فلم ہے جو آپ تھیٹر میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، تو سنیے فلم سمیکشک اربر ارنب بینرجی کی رائے۔ بات کر رہے ہیں ان سے بی بی سی سنواداتا ویبھو دیوان۔
2 اسٹار باپ کے 900 اسٹار کڈز کی فلم ہے لالی کی شادی میں لڈو دیوانہ۔
आए हैं।
फिल्म में नसीर साहब के साहबजादे विवान शाह और कमल हसन की कमल सी बेटी अक्षरा हसन है। फिल्म को मनीष हरिशंकर ने बनाया है, जो राजकुमार संतोषी के साथ काफी फिल्मों में काम कर चुके हैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर। तो उनका ये एक्सपीरियंस लाली की शादी में लड्डू दीवाना बनाने का कैसा लगा बराती अर्णब बनर्जी को?
हर फिल्म का हीरो होता है एक राइटिंग, यानी फिल्म की राइटिंग। अगर राइटिंग मजबूत है तो फिल्म चल सकती है। यहाँ पर अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, दर्शन जरीवाला हैं, सुहासिनी मूले हैं, लेकिन कुल मिला के इतनी कंफ्यूजिंग फिल्म है। विवान शाह तो अभी बन रहे हैं, यानी वो थिएटर कर रहे हैं, ऐसा लगता है कई जगह उनमें झलक है नसीरुद्दीन शाह की, लगता है कि कंफ्यूज्ड हैं कि किस तरह की एक्टिंग करूं। अक्षरा हसन दो एक साल और लगेंगे तैयार होने में। लाली की शादी को मैं 5 में से 1 दूंगा।
लाली की शादी में लड्डू हवा दीवाना, लाली की शादी में लड्डू हुआ दीवाना, लाली की।
अच्छा अर्णब, एक और फिल्म आई है मुक्ति भवन, उसके बारे में बताइए।
फिल्म में जो परफॉर्मेंसेस है, चाहे वो आदिल हुसैन का हो या ललित बहल का हो या नवनीत्र बहल का हो, इतने सहज हैं, लगता ही नहीं है कि वो अभिनय कर रहे हैं। मैं मुक्ति भवन को 5 में से 3.5 दूंगा।
इसके अलावा और भी कई फिल्में आई इस हफ्ते, बस उनको आपने स्टार्स देने, ज्यादा बताना नहीं क्योंकि आपके स्टार्स ही बहुत कुछ कह जाएंगे। ब्लू माउंटेन,
मिर्जा जूलियट भी एक प्रेम कहानी है, लेकिन वो प्रेम कहानी है या वो क्या है ये समझ में नहीं आता है। इस फिल्म को भी लोग आधा ही देख कर चले गए, तो उसको भी मैं 5 में से 0 ही दूंगा।
कमाल है यार, बड़े स्ट्रिक्ट हो गए आप। एग्जाम्स और आईपीएल के चक्कर में हर साल अप्रैल में एक ऐसा वीक आता है जब हल्की फुल्की फिल्में आती हैं। कोई नहीं, अगर इस हफ्ते कोई फिल्म आपको समझ नहीं आ रही तो एक रिकमेंडेशन देता हूं मैं आपको, पूर्णा देखना, अच्छी फिल्म है।
तो फिल्म रिव्यू हो गया, अब बात कर लेते हैं प्रेस रिव्यू की अखबारों की। हरिता,
जैसे अभी हमने फिल्म रिव्यू की बात की तो फिल्म की ही बात करते हैं। कल एक खबर जो सारे अखबारों में आज छाई हुई है वो है राष्ट्रीय पुरस्कारों की। अक्षय कुमार को बेस्ट एक्टर, नीरजा को बेस्ट फीचर फिल्म, और सामाजिक इश्यूज पर, सामाजिक मसलों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पिंक बनी है।
काफी विवाद भी हुआ
इंडिया है। जी, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से ये खबर आपको सुना रही हूँ। इसके अलावा एक और खबर, जनसत्ता ने पहली हेडलाइन बनाई है कि आम आदमी पार्टी के कार्यालय के लिए बंगले का आवंटन रद्द कर दिया गया है। शुंगलू समिति की जो रिपोर्ट आई थी उसमें, उसके बाद आम आदमी पार्टी के लिए पहला झटका है। इसके अलावा हिंदुस्तान अखबार में मैं ये खबर देख रही हूँ, पहली खबर है, गोरक्षा समूहों पर प्रतिबंध क्यों न लगे, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत 6 राज्यों को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब देने को कहा है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया हरिता इतने कम समय में सब समीक्षा करने के लिए। अब आईपीएल की बारी आ गई और हमारे साथ विकास हैं आज स्टूडियो में।
आईपीएल में कल रात को नया रिकॉर्ड बना, कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात लायंस को 10 विकेट से हराया। जीत के हीरो रहे कोलकाता के कप्तान गौतम गंभीर और क्रिस लेन।
जी, बहुत अच्छा खेले दोनों।
जी, दोनों के बीच पहले विकेट के लिए रिकॉर्ड साझेदारी हुई है। ये गंभीर ने 76 और लिन ने 93 रन बनाकर नॉट आउट रहे।
जी,
चौके छक्के हर ओवर बरस रहे
बिल्कुल
थे। पहले विकेट के लिए जो सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड था वो गेल और दिलशाद के नाम पर था, उन्होंने 176 रन बनाए थे। इससे पहले गुजरात ने 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 183 रन बनाए।
जी,
कप्तान रैना ने 67 रनों की अच्छी पारी खेली, लेकिन दिन गंभीर और लिन का था,
हो नहीं पाया। जी,
आज आईपीएल में 2 मुकाबले हैं, पंजाब और पुणे, और दूसरा मैच है दिल्ली और बेंगलोर के बीच में।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आईपीएल की खबर लेके आने के लिए। और अब बारी हो चुकी है प्रमुख विश्व समाचार की।
बीबीसी समाचार। अमेरिका ने गुरुवार के हमले के बाद सीरिया में और हमलों की चेतावनी दी है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सीरिया में अमेरिकी हमले के बाद संयम बरतने की अपील की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अमेरिकी निर्यात को बढ़ावा देने और चीन और अमरीका के बीच व्यापार घाटे को कम करने के लिए 100 दिवसीय योजना पर सहमति बन गई है। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टेफान लोवन ने कहा है कि राजधानी स्टॉकहोम में स्टोर में लॉरी घुसने का हादसा चरमपंथी कार्रवाई हो सकती है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए हैं। झारखंड के गुमला में एक मुस्लिम युवक की पिटाई से मौत के बाद तनाव है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अफ्रीकी देश द गाम्बिया में संसदीय चुनाव के परिणाम में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे तिलक भाटिया। दिन भर हम सीरिया के घटनाक्रम पर नजर रखेंगे और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, वो भी भारत में हैं। तो अगला प्रसारण शाम 7:30 बजे।